ओम शांति। दिलरुबा बाबा के दिल तख्त नसीन सदा सबकी दिल की दुआओं को प्राप्त करने वाले, दिल से सदा मेरा बाबा कहने वाले सबको वही दिल से मेरा बाबा पाठ पक्का कराने वाले, इस तन और मन की बीमारी के चिकित्सक, अनेक आत्माओं की दुआओं को प्राप्त करने वाले, तन मन के कष्ट को, बीमारियों को दूर करने वाले आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हम सभी के बीच में उपस्थित है। तैसे बाबा के अमूल्य रतन जिसको भगवान अव्यक्त बाप दादा वतन से याद करता है, ऐसी विशेष आत्मा आदरणीय भ्राता सतीश गुप्ता जी का इस सभा में भाई साहब आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भ्राता जी आपने दिल्ली में अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की हुई है, हृदय रोग चिकित्सा संबंधित आप अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सोल माइंड मेडिसिन के नवीनतम विचारधारा के रिसर्च वर्क पर आपको 2000-2001 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से आपको अवार्ड मिला है। सन 2000 में यूएसए में होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आपको गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाएंगे। आप 25 वर्ष से बाबा की इस ईश्वरीय सेवाओं में पल रहे हैं। आप मधुबन तपोभूमि के अंदर 15 साल से अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आपका ये परम सौभाग्य कि आप विशेष हमारी परम आदरणीय परम सम्मानीय दादी जी के स्वास्थ्य सेवा की देखभाल दिल व जान सिख व प्रेम से आप स्वयं करते रहे थे। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए आप सदैव नई नई इन्वेंशन करते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के द्वारा 2006 में आपको सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंसी इन मेडिसिन फॉर द 21st सेंचुरी अवार्ड आपको 2005 में यूएनओ के द्वारा भी प्राप्त हुआ है। आप सबको पता है कि जब अब्दुल कलाम जी ये जो बाईपास सर्जरी न करके राजयोग मेडिटेशन के द्वारा केयर के प्रोग्राम के द्वारा कैसे 100% ब्लॉकेज नड़िया की ओर हो जाती है, वो उनको जब पता पड़ा तो बाबा के घर से वो बहुत प्रभावित हुए थे और बाबा के घर आए, और इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने भी भाई साहब को याद किया हुआ था उसी समय। जो आप सभी मुरली सुनते हैं इस बात का भी आप सबको पता होगा। तो ऐसी बाबा की अमूल्य रतन हम सभी के बीच में उपस्थित है। अभी इनके स्वमुख से हम ज्ञान रतन से झोली भरेंगे। आज का आपका विषय है तन मन की बीमारी को दूर करने के लिए दिल से कहे मेरा बाबा, मेरा बाबा। आदरणीय भ्राता सतीश गुप्ता जी,
ओम शांति। तन मन की बीमारी की दवाई मेरा बाबा, बल्कि आज का विषय ये होना चाहिए तन मन की हर बीमारी की दवाई। खाली दवाई नहीं है, चूक दवाई, जिसे हम कहते रामबाण औषधि, जो कभी फेल ना हो, वो क्या है? मेरा बाबा। तो आज हम इसी राज को जानेंगे, मेरा बाबा कहने से या मेरा बाबा दिल में कहने से, दिमाग से नहीं कहना, दिमाग से कहने से नहीं होगा, कैसे होगा? दिल, ये वाला दिल नहीं, ये वाला दिल ना, आत्मा का दिल, आत्मा का दिल से निकले ये आवाज, श्वासो श्वास निकले, कभी कभी नहीं, श्वासो श्वास निकले, हर सेकंड निकले, हर संकल्प में निकले मेरा बाबा, तो फिर हमारे तन की और मन की हर बीमारी, कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, चाहे डॉक्टर ने भले मना कर दिया हो अभी आखिरी दिन है आपके, है ना, वो भी ठीक हो जाता है ना? ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे सैंपल्स हैं, आज भी वो जिंदा हैं, ऐसी बीमारी होने के बाद 10-10 साल 12-12 साल हो गए, उनको डॉक्टर्स ने कहा था अभी आपके आखिरी दिन है, आखिरी एक महीना बाकी है, आखिरी 15 दिन बाकी है, आज भी वो जिंदा है और बहुत सेवा कर रहे हैं। तो जादू जैसा इलाज होता है, छू मंतर हो जाती है बीमारी, कैसे कैसे होती है आज हम उसी बात पर बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे, करनी चर्चा। आप ऐसा तो सभी जानते हैं कि आज अगर हम किसी भी शहर में 100 लोगों का सर्वे करें तो 100 लोगों को तन की 200 बीमारियां हैं। कितनी बीमारियां हैं? तन की 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। आप भी अगर बैठे बैठे अपने आप को चेक कर लें, ध्यान से देख लें, अपने आप से बात कर लें, तो आपको भी 2 बीमारी तो मिल जाएंगी तन में। ध्यान से देखें, है ना, ध्यान से अंदर जाके देखेंगे तो आपको 2 बीमारी तो मिल जाएंगे। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, कोई मोटे हैं, मोटापा भी बीमारी है ना, एसिडिटी है, किसी सिर में दर्द होता है, किसी को अस्थमा है, किसी को कमर का दर्द होता है, किसी घुटने में दर्द है ना, गैस बनती है पेट में, है ना, मतलब बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी, किसी को आंख की तकलीफ है, किसी को नाक कान गले की तकलीफ है, किसको स्किन की तकलीफ है, तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके शरीर की बीमारियां, और तन मन की कौन कौन सी बीमारी है? सबसे बड़ी बीमारी सबको लगी है कौन सी बीमारी? चिंता। चिंता बीमारी है ना, सभी को चिंता है। बाबा ने सबको हमको बेफिक्र बना दिया ना कल, बाबा के बच्चे तो बेफिक्र क्योंकि हमने फिक्र सारा बाबा को दे दिया, तो हम तो बेफिक्र बन गए, किंतु दुनिया में फिक्र सबको लगी हुई है, चिंता सबको है, और दूसरी चिंता सबको है। दूसरा बीमारी मन की बीमारी भय है, डर। आपको पता बीमारी शब्द कहां से आया? कहां से आया बीमारी शब्द? बीमारी शब्द 2 शब्दों से बना है, बी और मारी। बी माना होता भय, बी माना डर, मारी माना बने रहना, तो बीमारी शब्द का अर्थ ही है डर बने रहना, भय बने रहना। तो भय और चिंता सबके अंदर है। फिर तीसरी बीमारी मन की है गुस्सा। गुस्सा कोई करना चाहता है क्या? गुस्सा कोई करना नहीं चाहता, किंतु गुस्सा क्या है? सबके अंदर है क्या नहीं? बाबा अपने हम अपने बच्चों को भी बार बार कहते हैं, बच्चे क्रोध मुक्त बनो, डबल अहिंसक बनो, काम विकार तो छोड़ दिया, किंतु अभी क्रोध कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में एंट्री ले लेता है, कभी कभी लेता है ना, चाहते नहीं है किंतु आ जाता है ना, आता है ना। जिन्हें क्रोध से विजय पाई हाथ उठाओ, जो क्रोध कभी नहीं करते, जो कभी भी क्रोध नहीं करते हाथ उठाओ, देखें कभी आज तक क्रोध नहीं किया, कोई भी हाथ नहीं उठाता। अच्छा, तो क्रोध भी देखिए बीमारी है ना। और एक दूसरी बीमारी आज है डिप्रेशन, उदासी। उदासी बहुत बढ़ती जा रही है आज के समाज में, जब बच्चों को भी, जवानों को भी, बूढ़ों को भी, पढ़ने वाले बच्चे जो आईएएस में पढ़ रहे हैं या मेडिकल में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, अच्छे बच्चे, रिच फैमिली के बच्चों को भी, बड़े बड़े अच्छे धनवान परिवारों के बच्चे, उनको भी डिप्रेशन है ना। डिप्रेशन का मेन कारण क्या है? अधिक इच्छाएं, है ना, डिजायर्स बहुत बढ़ गई हैं, इच्छाएं बहुत बढ़ गई, तो इच्छा जितनी हमारी, जितना हम बॉडी कॉन्शियस होते जाते हैं उतना ही हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे संबंधियों के पास ये होना चाहिए, है ना। तो वो इच्छाएं जो है, क्योंकि इच्छाएं जितनी हम करते हैं उतने विचार तेज चलते हैं, उससे हमारे अंदर जो केमिकल्स होते हैं दिमाग में, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो खर्च हो जाते हैं। खाली हो जाता दिमाग, तो फिर वो जो हम करना, फिर बाद में वो केमिकल्स कम हो जाने से होने से क्या होता है, हम इच्छाएं तो करते रहते हैं कि तो पूरी नहीं होती है, हम एकदम अपना लॉस ऑफ इनसाइट कहते हैं उसको, हम अपना कनेक्शन तोड़ बैठते हैं अपने आप से और उदास हो जाते हैं, है ना, एनर्जी खत्म हो जाती है, कुछ भी सोचने की पावर भी, कुछ करने की पावर, उसको एग्जीक्यूट करने की पावर खत्म हो जाती है, हम सोच तो रहे हैं किंतु एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, है ना। फिर नींद ना आना एक बहुत बड़ी आज मन की बीमारी, ये भी मन की बीमारी, नींद ना आना, बहुत लोगों को नींद नहीं आती, गोली खाके भी नींद नहीं आती है। तो ऐसी ईगो अहंकार सबके अंदर है, लोभ सबके अंदर आ गया है, मोह सबके अंदर, ये सब मन की बीमारी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन की बीमारी, आलस्य भी मन की बीमारी है ना, अलबेलापन भी मन की बीमारी, दूसरों में दोष निकालने की आदत भी मन की बीमारी है, बदला लेने की भावना रखना, रिवेंजफुल बिहेवियर, ये भी मन की बीमारी है। तो ऐसे बहुत सारी मन की बीमारियां, एक एक आदमी कम से कम 5-5 बीमारी से पीड़ित है, मन की बीमारी से, शरीर की बीमारी एवरेज 2 और मन की बीमारी एवरेज कितनी, वैसे 5 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 10 होनी चाहिए ना, 10 बीमारियों से पीड़ित है ना। तो आज की ये हालत है, आज हर आदमी तन और मन की बीमारी से पीड़ित है, इसलिए आज हर आदमी मन से दुखी, मन से अशांत है और तन से दुखी है, मन से दुखी भी कह सकते हैं, तन में बीमारियां हैं, तो क्या करें, डॉक्टर्स दवाई देते हैं, दादी जी भी कहा करती हैं कि डॉक्टर्स दर्द तो कम कर सकते हैं, दुख कम नहीं कर सकते, है ना। दुख कहां होता है, दुख कहां होता है, मन में होता है, दर्द कहां होता है, बॉडी में होता है ना। हम इंजेक्शन लगा के दर्द तो कम कर सकते हैं, ऑपरेशन करके दर्द तो कम कर सकते हैं, किंतु दुख दूर नहीं कर सकते। तो आज हम आपसे इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम, जो आज हम मेडिकल केयर में, चाहे वो कोई भी मेडिकल केयर हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, कोई भी मेडिसिन हम देते हैं, नेचर क्योर करते हैं, कुछ समय के लिए सिम्टोमेटिक क्योर कर देते हैं, कुछ समय के लिए उसको रिलीफ मिल जाता है, सदा के लिए बीमारी खत्म हो जाए, जड़ खत्म हो जाए उसकी, जड़ हमारे विचार हैं, अपने विचार हैं, है ना। बाबा ने भी कल कहा ना, मन से बेफिक्र बन जाओ, है ना, मन से बेफिक्र बादशाह बन जाओ, तो मन के मालिक बन जाओ। तो कैसे अगर हम बन जाते हैं, आज हम उसी बात पर गहराई से चिंतन करेंगे। आप तभी एक मिनट के लिए सभी मन बुद्धि को एक बार एकाग्र कर लेंगे, तो अपने मोबाइल अगले 40 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर देंगे, और ताकि हम 40 मिनट एकाग्र होकर बात समझ सके कि हमें कैसे अपने आप को ठीक रखना है। और हम विश्व के आधार, हम ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे, हम विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चे हैं, उदाहरण मूर्त बच्चे हैं। हमारे पीछे, हर एक के पीछे एक एक लाख की लाइन लगी हुई है, एक एक लाख व्यक्ति हमारे पीछे लगे हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देख के और भी आगे बढ़ेंगे, हम रुक जाएंगे या हम गलत करेंगे तो हमें देख के और भी गलत करेंगे। इसलिए हम ऐसा कर्म करें, ऐसे संकल्प करें, ऐसे बोल बोलें, जिससे देख करके और भी हजारों लाखों हमें देख के आगे बढ़ सके। तो अगले 40 मिनट आपके लिए, आप अपने मन को एकदम शांत, एकाग्र, मन और बुद्धि दोनों को एकाग्र कर लें और मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। चलिए एक मिनट के लिए आंखें खोल के डेस्क में बैठ जाएं और मन बुद्धि को एकाग्र इसी वाइट लाइट में, फिर हम इस पर चिंतन करेंगे कैसे बीमारियां होती हैं और कैसे मेरा बाबा शब्द कैसे उन बीमारियों का इलाज है। ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हेल्दी शब्द है, दो शब्दों से बना हुआ है ना। हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना, हील प्लस डाई, अर्थात हील डाई सेल्फ, अर्थात सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको हील कर सकता है, अर्थात ठीक कर सकता है। वो कौन है, चाहे मन की बीमारी हो चाहे तन की बीमारी हो, कौन ठीक कर सकता है, बोलिए कौन ठीक कर सकता है आपको, बाबा, बाबा। हील डाई सेल्फ अर्थात हील योर सेल्फ, है ना, अर्थात सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको हील कर सकता है, वो स्वयं आप है। तो जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ आप खाते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आप करते हैं कर्म, उससे आपको हीलिंग होती है या डैमेज होता है। जब हम जल्दी कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उदास हो रहे हैं, तो हीलिंग हो रही है, डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है ना। जब हम शांत हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हीलिंग हो रही है। नहीं, हम दूसरे में बुराई देखते हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करती, उसने ऐसा क्यों किया, है ना, बुरी बुरी बातें देखते हैं समाज में, घर में, बाहर, दूसरे भाई बहनों में, तो हम बीमार होते हैं, हमें डैमेज होता है। जब दूसरों के गुण देखते हैं तो हमें फायदा होता है। जब दूसरों की बुराई सुनते हैं, परचिंतन सुनते हैं, परदर्शन करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, तो हमें बीमारी होती है। मन पहले मन रोगी होता है, फिर तन रोगी होता है। इसके बजाय दूसरों की अच्छाई सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, बाबा की मुरली सुनो, बाबा के महावाक्य सुनो, है ना। अपने अपने जो बड़े भाई, हमारे दादियां हैं, उनके अच्छे, उनके बहुत सुंदर, उनके मन किए हुए चिंतन मंथन किए हुए बहुत सुंदर सुंदर क्लासेस सुनते हैं, है ना, तो उससे हमें हीलिंग होती है, राइट। इससे हम किसी के गलत बोलते हैं, क्रोध में आके बोलते हैं, उदास होके बोलते हैं, है ना, किसी के क्रिटिसाइज किसी करते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो हमें उससे खुद को नुकसान होता है। किसी के बारे में अच्छाई, उसकी विशेषता देख करके उसके विशेषताओं के बारे में बोलते हैं, गुणों के बारे में वर्णन करते हैं, या बाबा के महावाक्यों को रिपीट करते हैं, है ना, तो उससे हमें फायदा होता है। ऐसे ही अगर जो भोजन आसक्ति में खाते हैं, स्वाद के वश होकर खाते हैं, तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं, राजसिक भोजन ग्रहण करते हैं, बातें करते करते भोजन ग्रहण करते हैं, वो हमें नुकसान करता है। इसके बजाय हम सात्विक भोजन बाबा की याद में बनाते हैं, बाबा की याद में खाते हैं, उससे फायदा होता है। ऐसे जो कर्म हम बाबा की याद में करते हैं अपने हाथों से, तो उससे हमें फायदा होता है। और अगर हम जो बॉडी कॉन्शियस में आके बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं दूसरों को, तो उससे हमें नुकसान होता है। ठीक है, तो बेसिकली हेल्दी शब्द का मतलब ही है कि सारे विश्व में सिर्फ हम ही सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो अपने आप को हील कर सकते हैं। तो किसकी जिम्मेवारी हीलिंग करना? खुद की जिम्मेवारी है। अपने आप को स्वस्थ रखना किसकी जिम्मेवारी है? खुद की जिम्मेवारी है। मेरा बाबा कहना किसकी जिम्मेवारी है? हमें कहना पड़ेगा ना, मुझे हीलिंग चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा ना। फिर हेल्दी माना स्वस्थ, हिंदी में स्वस्थ कहते हैं ना, तो स्व माना क्या? स्व माना इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं, बाहर वाला मैं नहीं, स्व माना अंदर वाला। अंदर वाला मैं क्या है? आत्मा। तो स्व माना आत्मा, स्व माना सोल, इंग्लिश में कहते सोल, है ना, और स्था माना कॉन्शियस। तो स्वस्थ माना क्या हुआ? सोल कॉन्शियस। स्वस्थ माना क्या हुआ? सोल का। अतः स्वस्थ माना ही आत्मिक स्थिति में स्थित है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो स्वस्थ है, जो देहभान में स्थित है वो बीमार है। बीमार माना डर बने रहना, बीमारी माना डर बने रहना। बीमारी क्यों लग, क्यों डर क्यों बनता है? क्योंकि मैं अपने आप को देह समझता हूं, देह समझता हूं तो डर है ना। अपने आप को रोल समझता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं माँ हूं, बाप हूं, पिता हूं, पति हूं, तो डर लगता है, पता नहीं कुछ हो ना जाए। मैं अपने को आत्मा समझता हूं तो डर निकल गया, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो बीमार होती नहीं, है ना, तो डर निकल गया। तो जब अपने को आत्मा समझा तो डर निकलता है ना, और बीमारी खत्म हो गई, है ना। सत्यंग में स्वस्थ क्यों है सभी? सत्यंग में सदा स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। क्यों क्यों है ऐसे? क्योंकि वह सदा आत्मिक स्थिति में स्थित है। तो एवर हेल्दी माना ऑलवेज सोल कॉन्शियस, है ना। यही बात आज से लगभग 460 साल पहले कवि थे इंग्लैंड में, उनका बचपन का दोस्त था, वो आपको शायद कविता सभी ने सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुनी है सभी ने? ट्विंकल हमने सबने गाई भी होगी बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये कविता बनी कैसे थी? आज से 460 साल पहले कवि थे, उन्होंने एक वैसे थे कविता 1806 में दो सिस्टर थी जैन टेलर और किम टेलर, उन्होंने नर्सरी राइम के रूप में नर्सरी के बच्चों को शुरू की, चार लाइनें उस कवि की थी और बाकी उन्होंने आठ लाइनें और जोड़ दी, आठ या 12 लाइनें और ऐड करके नर्सरी राइम बना दिया। नर्सरी में पढ़ाते हैं ना बच्चों को कि तो ये असली कविता किसने लिखी जब तक किसको पता नहीं है। तो 460 साल पहले ऐसे कहा जाता है, जिसका नाम नहीं बताया इस कवि का, उसको उसका एक दोस्त था बचपन का, बूढ़े हुए, दोनों बूढ़े हुए थे कवि, वो कवि और उसका दोस्त अचानक दिन में बैठे थे, कवि के उसके कवि के दोस्त की डेथ हो जाती है, अचानक हार्ट बंद हो जाता है, तो उसके उनके घर वालों को बताया जाता है, घर वाले उसको देखते हैं तो उसके कफन बॉक्स, क्रिश्चियन लोग तो कफन बॉक्स में डालते हैं ना बॉडी को, तो कफन बॉक्स में डाल देते हैं, शाम को 5 बजे तक सिमेट्री में दबा दिया जाता है। तो शाम हो गई, वो बहुत उदास है, आज सोच रहा है वो कैसे मर गया, मेरा दोस्त कैसे मर गया, हम तो बचपन साथ साथ थे, वो मर गया तब भी जब तो भी वो ऐसा ही लग रहा देखने में, तो वो उसमें से क्या निकल गया जिससे वो मर गया, मैं क्यों जिंदा हूं, मेरे में ऐसा क्या है जिससे मैं जिंदा हूं वो मर गया। तो सोचता रहता है फिर उसकी नजर आसमान में जाती है, तारे निकले हुए थे, तो तारे आसमान में देखता है, तो तारे देखता है तो उसको याद आता है जब क्राइस्ट का जन्म हुआ तो कहा गया एक सितारा आसमान में आया, उसने क्राइस्ट के रूप में जन्म लिया, तो उसके अंदर से रियलाइज होता है ऐसा कुछ। यहां पर एक तारा है जो जब तक चमकता रहता सब कुछ चलता रहता है, जब वो तारा निकल जाता है कुछ भी नहीं काम करता है, पर वो समझता है कि वो तारा जो है दिखाई तो देता नहीं है, जब मेरे दोस्त मरा उसकी डेथ हुई तो तारा निकला तो होगा पर मुझे नजर तो नहीं आया, मैं तो वहीं बैठा था पास में, तो ऐसा तारा जो दिखाई भी नहीं देता है और ना दिखाई देके भी चलता है सब कुछ चलाता है, ऐसा वंडरफुल सितारा कहाँ है, उसको निर्णय होता है यहां पर है। तो वो लिखता है, उसके अंदर से कविता निकलती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कि मुझे आश्चर्य है कि तुम कैसे सब कुछ चलाते हो। फिर उसको भगवान का गॉड का ध्यान आता है, गॉड के बारे में क्या लिखता है, अप अबाउ दी वर्ल्ड सो हाई, मतलब इस सूर्य चांद वर्ल्ड कहां था जहां तक सूर्य चांद तारे हैं, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई मतलब सूर्य चांद तारों से भी पार एक और सितारा है, विच इज लाइक ए डायमंड नॉट ए डायमंड, जो हीरा नहीं है कि तो हीरे जैसा है, तो परमात्मा ने उसे हीरा शब्द इस्तेमाल किया, हीरा शब्द क्योंकि हीरे में 7 रंग दिखाई देते हैं लाइट गिरने पर ना, तो 7 कलर 7 लाइट दिखाई देती है, तो वो उसने लिखा इन द स्काई, लिखना चाहिए था अबाउ द स्काई है ना, तो उसने लिख दिया इन द स्काई। तो ये मतलब एक तो हम सभी सितारे हैं और वो एक सितारा वो है, उसमें 7 एनर्जी की वो पुंज है ना, तो एक्चुअली ये उसने कोशिश की कि अपने को आत्मा, उसको ज्ञान तो था नहीं, ये तो बाबा ने आके ज्ञान हमको दिया, हम बच्चों को दिया, तो अब ये आत्मा कैसे शरीर को चलाती है, कैसे शरीर को चलाती है, इसमें मेरा शब्द मेरा बाबा शब्द कहने से कैसे ठीक हो जाएंगे हम, तनो मन की बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी। आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, कहते ना अगर ज्ञान की महीनता में जाएंगे तो महान बन सकते हैं, कोई भी चीज की महीनता में जाने से ही हम महान बन सकते हैं ना, तो यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर और यहां से 3 इंच नीचे, यहां नहीं है इससे लगभग 2.5 इंच अंदर है और यहां से 3 इंच नीचे, तो वहां पर हाइपोथैलेमस और दो ब्रेन है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, उसके दोनों पे जहां दोनों का जहां जोड़ होता है उस एरिया को हाइपोथैलेमस कहते हैं, मतलब दोनों ब्रेन राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों वहां पर उनकी दोनों की एनकोडिंग वहां पर होती है, उसको ब्रेन ऑफ द ब्रेन्स भी कहते हैं, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं ताकि पूरी बॉडी में हार्मनी, उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड माना सारी बॉडी को कंट्रोल करती है उससे ऐसे केमिकल्स के द्वारा, तो इन दोनों ब्रेन्स का भी ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी, उसके दोनों के जंक्शन पे वो आत्मा है, वो सीट ऑफ द सोल है, वो आत्मा का स्थान है, और आत्मा क्या अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए कभी भी आत्मा को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अनुभव से जान सकते हैं, जैसे एक बिजली के तार में बिजली बहती है उसको आप देख तो नहीं सकते हो, किंतु बिजली जल रही है, बल्ब जल रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें बिजली जा रही है। दिखाई देगी तार में बिजली कभी दिखाई देती है क्या? किंतु बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, माइक चल रहा है, इसका मतलब इस तार में, ये तार है ना, इसमें बिजली है कि नहीं है? है ना, दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। मैं देखने की कोशिश करूं, दिखाई देगी क्या? आंखें बड़ी करके देखूं तो नहीं दिखाई देगी ना। ऐसे ही हम किसी के ऐसे ध्यान में देखने की कोशिश करें, दिखाई नहीं देगी। तो उस आत्मा से सात एनर्जी निकल रही है। सूरज जैसे है, उससे दो एनर्जी निकलती है, गर्मी और प्रकाश। इससे सात एनर्जी निकलती है, मतलब आत्मा से। वो सात एनर्जी से शरीर चलता है। उस सात एनर्जी के आधार पे ही कहा जाता है, सत्व प्रधान शब्द आया है, सत्व, सत्व माना सात, प्रधान माना भरपूर, सात से भरपूर। जब आत्मा उन सातों गुणों में भरपूर है तो सत्व प्रधान कहते हैं। जब वो आत्मा सात गुण हमारे उसमें आधे रह जाते हैं, रजो रजो उसका रजो का, रजो माना शाम, जैसे सूरज की धूप 12 बजे तेज है, रजो माना शाम। जब वो शाम हो गया, मतलब जब रोशनी आधी रह गई वो सातों एनर्जी की, तो उसको हमने रजो प्रधान कहा। और जो सातों एनर्जी लगभग नाक के बराबर रह जाती है तो कहते तमो, तमो माना अंधेरा। आज सातों एनर्जी लगभग नाक के बराबर हमारे अंदर रह गई, ठीक है। अब वो सात एनर्जी कौन सी है आत्मा में? वो आत्मा से हर समय निकलती रहती है, और हमारा शरीर 80,000 बिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है। अब प्रश्न आता है, मन क्या चीज है, बुद्धि क्या चीज है, संस्कार क्या चीज है? जो आज बाबा ने मुरली में बताया उसी को हम थोड़ा सा और गहराई समझ लेते हैं। बुद्धि क्या है? जैसे आत्मा एक बिंदु है, जैसे बल्ब जल रहा है, सबसे ज्यादा लाइट कहां पर है बल्ब की? कहां पर है? जहां बल्ब है उसके आसपास सबसे ज्यादा लाइट तो बल्ब के आसपास है ना। जितना दूर होते जाएंगे लाइट कम होती जाएगी। तो सबसे जो आत्मा का जो आसपास का एरिया है, जहां आत्मा अभी बैठी हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जंक्शन पे, वहां बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही हाईली रिफाइंड सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो उस करंट को सेंस करती है जो आत्मा से सात एनर्जी निकल रही है, और उसको सेंस करके उससे फिर मैसेज सारी जगह भेजती है, बॉडी के हर, ब्रेन के हर सेल्स में और बॉडी के हर कोशिकाओं। तो रिसीवर जैसे ये रिसीव कर रहा है आवाज को, ये रिसीव नहीं कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है ना आवाज को, इसको फिर एम्पलीफायर, इसको मैग्नीफाई करके आप तक पहुंचा रहा है ना। तो ऐसे ही वो रिसीवर, मैं इसके सामने बोलूं तो क्या होगा, आवाज आएगी आप तक? नहीं आएगी ना। इसके सामने बोलने से ऐसे ही वो कोशिकाएं क्या करती है, यहां वाली जो आत्मा से एनर्जी निकलती है उसको रिसीव करती है, रिसीव करके उसको जहां जहां उसकी एनर्जी फैलानी होती है उसको फैला देती है, ठीक है। तो वो एनर्जी जो यहां निकल रही है उसको उस एरिया को बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं। मतलब वो जो सेल्स रिसीव करती है ना, उन वहां वो सेल्स डिसीजन मेकिंग सेल्स होती है, सब कुछ सेंस करती है, और उसको फिर इंटरेक्शन करके उसका मैसेज फिर हमें आगे तक पहुंचाती है, क्योंकि वहां रिसीव भी होता है और वहां से मैसेज भेजा भी जाता है। और उसके जो बाहर है वो मन है। मन में चार बातें होती है, जैसे कहते हैं ना आत्मा के सात गुण कौन से हैं, इंग्लिश में कहें तो हम सात एनर्जी कौन सी है, हिंदी में कहें पहले ज्ञान, पहला ज्ञान है, ज्ञान को इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं। फिर पवित्रता है, प्योरिटी जैसे कहते हैं। फिर शांति है, पीस। फिर लव मतलब अर्थात प्यार है। फिर खुशी अर्थात सुख, हैप्पीनेस है। और फिर उसके बाद आनंद है, ब्लिस। और उसके बाद शक्तियां है। ये सात एनर्जी है आत्मा की। ये सातों एनर्जी आत्मा से निकलती रहती है और सारे शरीर को चलाती है। पहली एनर्जी ज्ञान है। ज्ञान वैसे तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा ज्ञान है, बाबा मुरली में कई बार बाबा की मुरली में आता है ना, ज्ञान सारी धरती को कागज बना दे, समुन्द्र को शाही बना दे, सारे जंगलों को कलम बना दे, तो भी ज्ञान पूरा नहीं होगा, ऐसा बाबा कहते हैं ना। और ज्ञान की देखो रोज नई नई मुरली सुनते हैं, कितनी कितनी क्लासेस होती हैं, तो ज्ञान पूरा थोड़ी ना होता है। 75 ईयर्स हो गए, अगर सब किताब इकट्ठी करें तो डायमंड हॉल भर जाएगा ना। इतनी सारी मुरलियां, इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी उसकी चीज निकली है ना। तो ज्ञान का कोई सीमा नहीं है ना। कि तो सार रूप में देखें तो ज्ञान में सिर्फ चार बातें हैं, ए बी सी डी। ज्ञान सार रूप में क्या है? ए बी सी डी। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा। सब आत्माओं का पिता कौन है? हम सब आत्मा हैं और हमारा पिता कौन है? बाबा, परमपिता परमात्मा शिव। और सी फॉर कनेक्शन, अर्थात हमारे सर्व संबंध, हम सब आत्माओं के सर्व संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। वो हमारा माता भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, सज्जन भी है, बच्चा भी है। नौ संबंध तो ये मुख्य संबंध, नौ संबंध है जो हमारे उनके साथ है। वैसे तो बहुत सारे हर संबंध उनके साथ है, किंतु नौ संबंध तो हमारे उनके साथ विशेष है। चलिए दो मिनट बाबा को याद करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ज्ञान सार रूप में क्या है? ए बी सी डी। ए फॉर आत्मा, बोलो सभी, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर ड्रामा, है ना। तो मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, और डी फॉर ड्रामा, अर्थात ये सारा विश्व एक ड्रामा, सृष्टि एक ड्रामा है, इसमें हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, और हम आत्माएं कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। अर्थात एक्यूरेट डायरेक्शन देने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति हम सब जो आपस में संबंध में रहते हैं, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, या सेंटर में भी भाई बहने रहते हैं, सेंटर में बहने रहती हैं, तो वो हमारे साथ, हमारा उनको पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। हमने उनको किसको दुख दिया हुआ है, तो वो सेंटर में वो बहन या भाई वो हमको वापस दुख देने वाला ही है। या आपके बच्चे, आपके बच्चे के रूप में, या पति पत्नी के रूप में, आप पति पत्नी के रूप में, तो आपको आपकी पत्नी या पति आपको दुख देने वाला ही है। अगर आपने पति को पिछले जन्म में दुख दिया है, तो इस जन्म में वापस पति आपको दुख देने वाला है। और आप बाबा को बोलो, बाबा देखो मुझे दुख देता है ये व्यक्ति, इसको कहो ना मुझे दुख नहीं दे, तो बाबा उसको कहेगा नहीं, बाबा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, बाबा आपको सहन शक्ति दे देगा, ताकि वो दुख दे भी दे और आप उसका अकाउंट भी पूरा हो जाए और आप भी चुकतू हो जाए। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई गलत घटना घटने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ होने वाला है, या कोई मर गया, तो आप बोलो बाबा इसको ठीक की जिंदा कर दो ना, तो बाबा जिंदा करेगा उसको नहीं, आपको सामना करने की शक्ति दे देगा। तो बाबा क्योंकि सर्वशक्तिमान है, वो हमको शक्तियां दे देता है, किंतु उसको इंटरफेयर नहीं करता है, राइट? क्योंकि हमने दिया। एक बार बाबा को याद हुआ मुरली में, आपने, बाबा ने एक बार कहा माताओं को कि माताओं को मतलब उनके पति तंग करते हैं, अब उनको पिटाई करते हैं, तो बाबा ने क्या कहा था याद है आपको? अभी कुछ 15-20 दिन पहले आपकी मुरली है, तो बाबा ने कहा बच्चे आपने पहले उसको पीटा हुआ है ना, पिछले जन्म में, इसलिए वो आपको वापस कर रहे हैं। तो कोई भी कर्म जो है वो हमें सिर्फ उसका अकाउंट चुकतू कर रहे हैं। तो इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ, किसने आपको धोखा दिया इस जन्म में, तो वो धोखा वो गलत नहीं दिया, आपने पहले धोखा दिया हुआ है। किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया बिजनेस में आपको धोखा दे दिया, तो आपने पिछले जन्म में दिया हुआ है, वो वापिस कर रहा है ब्याज के साथ, है ना, इंटरेस्ट के साथ। इससे जो हुआ अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है ना। तो ये ABCD हुआ ना, ये ज्ञान है। मुरली भी क्या होती है, मुरली कहां से शुरू होती है, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ के बैठे हो, बाप की याद में बैठे हो, बाप शिक्षक सतगुरु तीनों याद है, फिर बाबा ड्रामा की बात करता है, सुदर्शन चक्र की बात करता है ना। देखे तो मुरली क्या ABCD पे, बाबा ये जो मुरली है सार रूप में तो देखो ABCD है ना, नहीं है? तो ये जो मुरली है या बाबा का ज्ञान है, बाबा ने जब सत्य ज्ञान दिया है, ये सत्य ज्ञान हमें, हमारे अंदर इस ज्ञान से पवित्रता आती है। बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पवित्रता का सागर है। ऐसा नहीं कि पहले पवित्र बनाता है फिर ज्ञान सागर, फिर ज्ञान देता है, ऐसा नहीं है, ऐसा है ना? पहले क्या है बाबा, ज्ञान का सागर है, फिर पवित्र, तो ज्ञान सुना के हमको पवित्र बनाता है ना? तो ज्ञान से पवित्रता, ABCD से पवित्रता आई, पवित्रता से शांति आती है। शांति किसे कहते हैं, कम विचार हो जाना, कम विचारों को शांति कहते हैं, पॉजिटिव विचार कम होते हैं। तो जब पवित्र, जब मन शुद्ध हो गया तो क्या होगा, विचार कम हो जाएंगे, है ना, तो शांति आ गई। जब और विचार कम होंगे तो प्यार की फीलिंग आती है। जब प्यार, जब हम देखिए, आप भी कोई गाड़ी तेज चला के जाता है ना, 150 की स्पीड से गाड़ी चला के जाए, तो रास्ते में कोई नेवला आके सड़क पे मर गया कुत्ता, तो उसमें आपको महसूस होता है कि मैंने किसी को मारा? तो जब गाड़ी रोकते हैं ना, तुरंत याद आता है, हाँ वो नेवला मेरे सामने से निकला, शायद मरना गया हो, नहीं? तो फास्ट जब जा रहे हो तो हमें कभी ध्यान नहीं आता कि हमसे कोई गलती हुई, किंतु जब हम स्लो हो जाते हैं ना, तो हमें रियलाइज होने लगता है कि हमें गलती हुई। तो प्यार क्या है, लव क्या है, लव है केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। किसी की केयर करना डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, रेस्पेक्ट को मेंटेन करते, उसके आदर, उसको आदर देते हुए। एक माँ अपने बच्चे को खाना बना के देती है, उसका सब कपड़े भी धोती है, प्यार सब कुछ करती है, तो साथ साथ डांटती भी रहती है, तो बच्चे को प्यार महसूस होगा, नहीं होगा ना? वही बात, हम जब दूसरों की केयर करते हैं, साथ साथ उनकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए करते हैं, तो हमें प्यार की फीलिंग आती है ना, उसमें अपनी गलती को रियलाइज करके हम सॉरी भी कह लेते हैं, तो उससे लव की फीलिंग आती है ना? प्यार। तो ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति, शांति से प्रेम, प्रेम से खुशी आती है, और खुशी से आनंद आता है। और जिस चीज में आनंद आता है उसको हम परखते हैं ये ठीक चीज है, उसके लिए हम निर्णय करते हैं यही करना है, उसी के लिए विस्तार को सार में समा लेते हैं, उसी को सब कुछ समेट लेते हैं, उसी के लिए सब कुछ सहन करते हैं, उसी के लिए सब कुछ सामना करते हैं, उसी के लिए सब कुछ संभाल लेते हैं, उसके लिए सब कुछ सहयोग करते हैं, है ना राइट। तो जिस चीज में आनंद आया उस चीज के लिए हम, तो हमें जो अविनाशी आनंद की प्राप्ति होती है आत्मस्थिति में टिकने से, परमात्मा की याद में रहने से, तो उसके लिए फिर हम सही आठों शक्तियां उससे पैदा होती है आनंद की शक्ति से। ये सीक्वेंस है सातों गुणों की ना। तो आत्मा से सातों गुण निकलते रहते हैं, सात एनर्जी निकलती रहती है और सारी कोशिकाओं में फैलती रहती है और उससे शरीर चलता है। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, जैसे बताया बुद्धि मैंने बताया शुरू में आसपास, उसके बाद मन में चार बातें, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। स्मृति को इंग्लिश में मेमोरीज कहते हैं, वृत्ति माना एटीट्यूड नजरिया दृष्टिकोण, और भावनाएं शुभ भावना या दुर्भावना है ना, और संकल्प, ये चार बातें इंग्लिश में कहें तो टीम कहेंगे, टीम थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड एंड मेमोरीज। थॉट्स माना संकल्प, इमोशंस माना भावनाएं, और एटीट्यूड माना वृत्ति, और मेमोरीज माना स्मृति। तो स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, ये चार बातें, और उसके बाहर हमारी फिजिकल बॉडी है। सूक्ष्म शरीर अंदर है और फिजिकल बॉडी उसके बाहर है। सूक्ष्म शरीर और फिजिकल बॉडी इसी तरह से है जैसे आप एक प्लेट में दूध ले लीजिए और एक सूखी ब्रेड ले लीजिए और दूध में वो ब्रेड डाल दीजिए, क्या होगा? अभी दूध कहां गया? ब्रेड ने सूख लिया ना, अब दूध का शेप कैसी हो गई? दूध की शेप कैसी हो गई? जैसी ब्रेड की शेप है ना, तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की शेप कैसी है? जैसे सूक्ष्म शरीर की इस स्थूल शरीर की शेप है। तो ये सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं, सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर सिर्फ मन ही, मन को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। किसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं? मन को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आत्मा के तीन कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म कौन कौन सी? मन बुद्धि संस्कार, तीनों सूक्ष्म। सूक्ष्म है ना जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, मन आंखों से दिखाई देता है, बुद्धि आंखों से दिखाई देती है, संस्कार आंखों से दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते ना। तो मन बुद्धि और संस्कार एक तीनों चीज मिलकर ही सूक्ष्म शरीर बनता है। तो बुद्धि माना सात गुण, जो तो ज्ञान कहां होता है? बुद्धि में होता है। पवित्रता कहां? बुद्धि में। शांति कहां? प्रेम कहां? सुख कहां? आनंद शक्तियां कहां? बुद्धि में होती है ना सारी। फिर बुद्धि के भी आगे चार पार्ट्स हैं। बुद्धि का जो सबसे बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो है दिल, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं। दिल, ये दिल नहीं, ये दिल तो खून वाला दिल है ना, पंप है। ये दिल जो सात गुणों से भरपूर रहता है, और इस सात गुणों के आधार पे विवेक बनता है। उसके बाहर विवेक है, विवेक माना परखने की शक्ति, विजडम, और उसके बाहर बुद्धि प्रॉपर है, अर्थात निर्णय करने की शक्ति, और उसके बाहर चित्त है, चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड, मतलब विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन सामना समाना सहयोग, इस छह शक्तियां उससे मिलकर चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगर हमारा दिल में सात गुण भरपूर हैं, तो हम विवेक हमारा अच्छा काम करता है, विजडम परखने की शक्ति ठीक काम करती है, तुरंत हम निर्णय ले लेते हैं, और निर्णय लेके हम उसको मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, मेमोरी में चला गया, मेमोरी यहां है, स्टोर हो गया। किंतु अगर निर्णय ठीक नहीं लेते हैं, हमारे पास सात गुणों की कमी है, सात गुणों से सात गुण अंदर अच्छे नहीं है, बुद्धि में सात गुण की कमी पड़ गई, जैसे आज हमारी सिस्टमों पर दान स्थिति होती है मनुष्य की, तो निर्णय नहीं ले पाता है ठीक समय पर, परख नहीं पाता निर्णय, विवेक ठीक काम नहीं करता और बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले पाती, तो वो अनडिसाइडेड फॉर्म में पड़ा रहता है। हमने डिसीजन नहीं लिया, फाइल को सेव नहीं किया, कंप्यूटर में फाइल सेव नहीं करते ना, तो कहां गई वो फाइल? डस्टबिन में चली जाती है ना? तो वो सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी हो जाती है ना? यही सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि आज के समय में द्वापर युग से जब से देहभान आया, देह मन से फिर पांच विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गए। फिर इनके बाल बच्चे हैं बहुत सारे, आलस्य काम के दो बच्चे आलस्य अलबेलापन है, क्रोध के दो बच्चे दूसरे में दोष निकालना और बदलने की भावना है, लोभ के दो बच्चे शक और अनुमान है, चिंता मोह के दो बच्चे चिंता और भय है, और अहंकार के दो बच्चे हैं जल्दीबाजी प्रेशर, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, हर चीज में जैसे मैंने कहा ऐसा होना चाहिए, मैं जैसे कहा कंपटीशन और ईर्ष्या, ये दो बच्चे इसके। दस बच्चे तो हुए पांच विकारों के, और उसके दस दस आगे फिर और हैं, तो क्योंकि पूरी सेना है, इसे 100 करोड़ कहे जाते हैं। तो ये जो है फिर नेगेटिविटीज बहुत सारी हो जाती है ना। तो ये जो जब से द्वापर युग से जैसे से वीकनेस आई, सत्युग में सातों गुणों से भरपूर थे, आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी, और हमारा विवेक था एकदम फर्स्ट क्लास, परफेक्ट था, सात गुणों से भरपूर थे तो परफेक्ट हमारा विवेक था, हर बात को राइट रॉन्ग परख लेते थे, निर्णय सेकंड में करते थे, चित्त कैसा था, शांत और एकाग्र था, क्योंकि कोई फाइल हम छोड़ते नहीं थे, सीधी मेमोरी में स्टोर करते थे, बिना एकदम बात हुई डिसीजन लिया, कोई इसमें कोई मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं थी, राजा को मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं थी, राजा अपना खुद डिसीजन लेता था, मंत्री की आवश्यकता नहीं थी, और चित्त एकदम शांत और एकाग्र था, साफ था, एकदम सबकॉन्शियस माइंड था ही नहीं सत्युग में, अनकॉन्शियस माइंड भी नहीं था, 100% कॉन्शियस माइंड था, और इसलिए मेमोरी में सीधी सीधी स्टोर होती थी, वृत्ति हमारे सबके प्रति आत्मिक थी, भावना सबके प्रति शुभ थी, संकल्प श्रेष्ठ शुद्ध शक्तिशाली और कल्याणकारी थे, और जो एनर्जी आत्मा के अंदर थी, सातों गुण निकल रहे थे, वो बॉडी के हर कोशिका में फैल रहे थे, इसलिए हमारी कंचन काया थी, कोई रोग था ही नहीं, तो मन भी स्वस्थ था, मन खुश था, शरीर स्वस्थ था, सत्युग में ऐसा था। धीरे धीरे सात गुण कम होने शुरू हो गए, जैसे पुराना होता है ना, बैटरी भी तो पुरानी होती है ना, तो आत्मा रूपी बैटरी घिसती चली गई, द्वापर त्रेता युग आया, 25% बैटरी कम हो गई, तो भी गाड़ी ठीक चलती रही, रोग नहीं आए, फिर द्वापर का शुरू हुआ जैसे, तो हमारी एनर्जी 50% हो गई। 50% होने से आपको याद है, आपको पता होगा, जब हम किसी कंपनी में हमारे शेयर, कोई कंपनी होती है ना, कंपनी जो होती है, तो उसमें अगर आपके 51% शेयर होते हैं, तो मालिक कौन होता है, जिसका 51% शेयर होता है, उसका ही मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके ट्रस्टीज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनका ही बनाया जाता है, और अगर जिसका 49% हो गया तो क्या होगा, अब उसका मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर किसका बन जाता है, 51% का, है ना। तो अभी क्या हुआ, जब आत्मा की शक्ति कम हो गई, 50% हो गई, तो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बदल गया, पहले मैनेजिंग डायरेक्टर कौन था, आत्मा थी, अब उसके नीचे कौन था, नेक्स्ट कौन था, आत्मा के नेक्स्ट कौन था, मन, जो बाबा ने आज मुरली में बताया ना, मन पर ही बाहर का असर पड़ता है, दृश्यों का, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने का, जो भी हम कर्म करते हैं मन पे ही उसका असर पड़ता है, और फिर मन इंद्रियों को अपना बना लेता है, आंख नाक कान मुख को अपना बना लेता है, और राज अपने आप करने लगता है, राजा को गुलाम बना देता है, अभी मन बन गया मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, कब से, द्वापर युग से, है ना। तो अभी आत्मा पहले नरिश कर रही थी, आत्मा सात गुणों से मन को नरिश करती थी, स्मृति को भी, वृत्ति को भी, भावना को भी, संकल्प को, पूरी टीम सातों गुणों से नरिश होती थी, तो बाहर देखने की आवश्यकता नहीं थी, आंखों से देखे बहुत सुंदर दृश्य है उस पर आप मोहित हो गए, ऐसा नहीं होता था, आत्मा अपने ही गुणों में खोई रहती थी, दूसरे का शरीर देखने की आवश्यकता नहीं थी, इसका शरीर, इसके नए नक्श कैसे हैं, शरीर कैसा है, किसी की बुद्धि जाती नहीं थी, अंदर ही अतिंद्रिय सुख में खोए होते देवी देवता। तो जब पहली बार जब एनर्जी कम होती है, तो हमारी नजर दूसरों पर जाने लगती है, इसकी नाक ऐसी है, इसकी आंख ऐसी है, इसका ये ऐसा है, इसका बोलचाल ऐसा है ना, तो देह पर बुद्धि जाती, इसलिए फिर विकार आने शुरू करते हैं, कोई अच्छा लगने लगता है, कोई बुरा लगने लगता है, किसी से मोह हो जाता है, किसी से ईर्ष्या हो जाती है, किसी के कुछ चीज ये चीज ज्यादा मेरे पास होनी चाहिए, लोभ होने लगता है, काम विकार आने लगता है, किसी की देह को देख के क्रोध आने लगता है, इसने ऐसा क्यों किया, अहंकार ईगो आने लगती है, तो इस तरह से पांच विकारों का जन्म होता है, पर 5000 का जन्म होने से धीरे धीरे एनर्जी बहुत तेजी से कम होने लगती है. 49%, 48%, 47, 45, 40% एनर्जी कम होती जाती है. और फिर क्या होता है, इन मन को, अब मन कहां से नरिशमेंट लेने लगता है? पहले तो अंदर से मिलता था, अब नरिशमेंट कहां से लेता है? 5 तत्वों से लेने लगता है. देखो मैं जरा सूरज के ऊपर क्या है, चांद के ऊपर क्या है, समुद्र के नीचे क्या है, है ना, धरती के नीचे क्या है, है ना, मतलब भूमि को खोजता है, जल में जाता है नीचे, वायु कहां तक है, पहाड़ों के ऊपर क्या है, फिर 5 तत्वों को खोजना शुरू करता है. तो वहां से आनंद लेने लगता है. जो अंदर से सुख मिलना खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया, अंदर से मिलना शांति अंदर से खत्म हो गई, जंगल में जाना शुरू कर देता है. तो मन बाहर शांति प्रेम खुशी ढूंढना शुरू करता है. अंदर कम हो गई ना, तो बाहर से लेना शुरू कर देता है 5 तत्वों से, है ना. और वहां से फिर वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है मन, इन 5 इंद्रियों का सहारा लेकर के. तो मन को जो लगता है अच्छा, वो फिर इंद्रियों को यूज करता है. इसलिए इंद्रियां आत्मा के वश से खत्म हो जाती है. आत्मा का राज्य इंद्रियों पर खत्म हो जाता है, मन बुद्धि संस्कार पर खत्म हो जाता है, आत्मा गुलाम बन जाती है और मन क्या बन जाता, राजा बन जाता है. स्वराज्य माना स्व माने आत्मा, राज्य माने आत्मा का राज्य पहले मन बुद्धि संस्कार पर था. सतयुग में 5 कर्मेंद्रियों पर था, 8 अंगों पर था. सतयुग में 50% ऑक्सीजन होती है धरती पर, जहां कोई बैक्टीरिया वायरस मच्छर मक्खी कॉकरोच सांप बिच्छू होते ही नहीं, क्योंकि वो जिंदा नहीं रह सकते ज्यादा ऑक्सीजन में, वो कम ऑक्सीजन में जिंदा रह सकते हैं, है ना. तो वहां पर कोई रोग शोक है ही नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. वहां गर्म महल है, गर्भ जेल है ही नहीं, है ना. क्योंकि द्वापर जाकर नाना के पास गर्भ जेल शुरू हो जाती है. और जैसे जैसे सातवें एनर्जी कम होने लगती है, तो शरीर में अब सेल्स में एनर्जी कम होने लगती है, आदमी पेड़ों काटने लगता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, विकारों के कारण पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ऑक्सीजन कम होने लगती है, ये बैक्टीरिया वायरस शुरू पैदा होने शुरू हो जाते हैं, मच्छर मक्खी शुरू हो जाते हैं, सांप बिच्छू पैदा हो जाते हैं, कॉकरोच पैदा होने लगते हैं, चूहे पैदा होने लगते हैं, बीमारी आने लगती है. इस तरह से रोगों की शुरुआत होती है द्वापर युग से. तो जैसे जैसे वो आदमी के अंदर विकार आते जाते हैं, एनर्जी आत्मा की एनर्जी कम होती जाती है, सेल्स को एनर्जी कम मिलती है, टीम नेगेटिव होती जाती है. मेमोरी में क्या भरता जाता है, ये ऐसा है वो ऐसा, जो भी हम सोचते हैं बोलते हैं देखते हैं, जो देखते हैं बोलते हैं खाते हैं सुनते हैं हाथों से कर्म करते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है. उसी को हम मेमोरी कहते हैं, उसी को हम संस्कार कहते हैं. जो मन के द्वारा देखा सुना बोला खाया किया वो, और बुद्धि उसमें सहयोग देती है, वो हमारा बार बार करते करते संस्कार बन जाता है, जिसको हम बाद में मेरा संस्कार मेरा स्वभाव कहने लगते हैं, मेरे नेचर कहने लगते हैं. इस तरह से हमारे विक्रम माना वो पाप कर्म जो हमसे फिर बार बार होते रहते हैं. जिस व्यक्ति के साथ हम ऐसा करते हैं, गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं, गलत खाते हैं, गलत सुनते हैं, गलत काम करते हैं, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो जाता है. और जब व्यक्ति हमारे सामने आता है, वो सिचुएशन हमारे सामने, तो वो फाइल खुल जाती है और हमसे वही विक्रम दोबारा हो जाता है. इसलिए पाप होते रहते हैं, एनर्जी कम होती जाती है, कम होती जाती है. तो कलयुग के अंत में आके हमारी एनर्जी इतनी कम हो जाती, ऑक्सीजन 20% रह जाती और हमारे अंदर विकार पूरी तरह से हमारे पास कुछ हावी कर लेते हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया, तरह तरह के वायरस, तरह तरह की बीमारियां फैल जाती. अब क्या करें, 7 एनर्जी खत्म हो गई, टीम नेगेटिव हो गई, इतनी सारी मेमोरीज नेगेटिव हो गई भर गई, वृत्ति हमारी सबके प्रति बॉडी कॉन्शियस वाली हो गई, ऊंच नीच वाली हो गई, ये बड़ा है ये छोटा है, ये ऊंच ये पैसे वाला है कम पैसे वाला है, इसको अकल कम है इसको ज्यादा अकल है ना, सब जगह हमने ऊंच नीच पैदा कर दी. भावना सबके प्रति, जो मतलब का व्यक्ति है उसके प्रति अच्छी भावना है शुभ भावना है, जिससे कुछ मिलने वाला है, जिससे कुछ मिलने वाला है उसके प्रति भावना ही नहीं कोई, है ना. संकल्प में मतलब ही हो जाते हैं. संकल्प भी कैसे होते हैं, व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प 90%, 90 के 99% व्यर्थ और नेगेटिव, बाकी 1% पॉजिटिव संकल्प, ये हालत हमारी हो जाती है. तो उसका अब ऐसी स्थिति में क्या करें, अब ऐसी स्थिति में एक ही इलाज है, वो क्या है, हमें 7 गुण कमी हो गई बहुत जोर से, अब 1-2% 7 गुण बचे हैं सिर्फ, और जिससे शरीर चलता था, टीम भी नेगेटिव हो गई। अब सात गुण किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है, कौन से दुकान पे मिलते, चांदनी चौक में मिलते हैं क्या, बॉम्बे में मिलते हैं क्या, नहीं मिलते ना। तो वो सिर्फ उसकी एक ही हड्डी है, वो शिव बाबा है। शिव बाबा को याद क्यों करते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी धर्म वाले जाति वाले क्यों याद करते हैं, अलग नाम से याद करते हैं, क्योंकि सात गुणों का सागर वो है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, ओशियन ऑफ सेवन एनर्जीज। तो वो सिर्फ वो है कि तो वो किस में आएगा, किस दिल में आएगा, किस दिल में आएगा। आज सभी की दिल झूठी है, झूठी माना सब अपने को देह समझते हैं, कोई अपने को डॉक्टर समझता है, कोई अपने को वकील समझता है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा अनुभवी समझता है, कोई अपने आप को महात्मा समझता है, महात्मा है नहीं समझता है ना, कपड़े पहन के वैसे समझता है कि मैं ऐसा बन गया है ना, किसी ने महिमा की तो बहुत बड़ा समझ लेता है अपने आप को, है ना। तो वो जो है ये सब बॉडी कॉन्शियस और रोल कॉन्शियस और मटेरियल कॉन्शियस या रिलीजन कॉन्शियस हो गए, जो मैं हूं वो भूल गए। तो बाबा आकर के सबसे पहले हमें दिव्य बुद्धि देता है, क्या देता है, दिव्य बुद्धि। ये बुद्धि में एबीसीडी डाल देता है, क्या डालता है, एबीसीडी डालता है बुद्धि में आकर के, करंट देता है आके एबीसीडी डालता है, बच्चे तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, तुम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो, वृक्ष के बीच में हो, मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूं, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं। और संसार एक ड्रामा है, नाटक है, इसमें हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है कर्म सिद्धांत के अनुसार, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो बाबा किस दिल पर राजी होता है, किस दिल में आता है बाबा, किस दिल से आवाज निकलेगी मेरा बाबा, सच्ची दिल से, साफ दिल से, सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्ची दिल कौन सी है, जिस दिल में ये पक्का है, ये दिल नहीं ये दिल, जिस दिल में ये पक्का है, आत्मा के दिल में जो पक्का है कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, जिसके उठते बैठते चलते फिरते अनुभव होता रहता है, रियलाइज करता रहता है, उसको एक्चुअलाइज करता है जीवन में, कार्य व्यवहार में आते आते, परिवार में, कार्य में मिलते हुए, भाई बहनों से मिलते हुए, ये बार बार रियलाइज करता है मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। वो जो है सच्ची दिल, और उसमें मेरा कौन है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा कौन है, मेरा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव परम धाम में रहने वाला है। अभी वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, जो चलते फिरते इस बात को महसूस करता है, रियलाइज करता है, वो है सच्ची दिल वाला। और साफ दिल वाला, जिस दिल में इसके अलावा कोई और नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वो है साफ दिल वाला। तो जहां सच्ची दिल साफ दिल है, उस दिल में दिलाराम आ जाता है। दिलाराम कौन है, ज्ञान का सागर है। कौन है मेरा बाबा, जब मेरा बाबा बोलते हैं तो मेरा बाबा बोलते समय अंदर से बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, महसूस होना चाहिए मेरा बाबा कौन, ज्ञान का सागर। अंदर किसका सागर, एबीसीडी का सागर है ना, किसका सागर है, अंदर से इसमें सागर अंदर आ गया ना, भले कितना भी अंदर कच्चा कालापन लग गया हो, मैं देह हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अनुभवी हूं, मेरे पास इतना बड़ा ओहदा है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी कारें हैं, इतने वो हैं, इतने साधन हैं, इतने बड़े मकान हैं, उन सबको धोने के लिए क्या चाहिए, ये ज्ञान चाहिए। तो अंदर ये बहुत गहराई से अनुभव करना, मैं कौन हूं, इस एबीसीडी को अंदर अनुभव, रियलाइज करो, महसूस करो, वास्तविकरण करो उसका, तो अनुभव होगा, अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। फिर पवित्रता का सागर आ गया, जितना भी मेरे मेमोरी सेल्स में गलत गलत मॉलिक्यूल्स प्रिंट हो गए, मेमोरी मॉलिक्यूल्स बन गए संस्कार, वो सब साफ हो जाएंगे। शांति का सागर, जितनी भी शांति आ गई हो, कितने विचारों की तेजी आ गई हो, वो सब शांत हो जाएंगे। प्रेम का सागर आ गया, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर आ गया। तो ये जो मेरा बाबा, इस फीलिंग से अपने आप को महसूस करना, तो उससे क्या होगा, उसका मन किस चीज से भर जाएगा? जिस दिल में ये सातों चीजें भर गई, दिलाराम आ गया, उसका विवेक कैसा होगा? वापस ईश्वरीय हो जाएगा, बुद्धि वापस दिव्य हो जाएगी, चित्त वापस शांत और एकाग्र हो जाएगा। जो चित्त अशांत हो गया था, चंचल हो गया था, चित्त वापस शांत और एकाग्र हो जाएगा। उसकी स्मृति में एबीसीडी भर जाएगा, वृत्ति वापस आत्मिक हो जाएगी, भावना फिर शुद्ध हो जाएगी, शुभ भावना संकल्प श्रेष्ठ शुद्ध और शक्तिशाली कल्याणकारी हो जाएंगे। जो सातों एनर्जी जो बॉडी में जाती नहीं थी पहले, अब वापस जानी शुरू हो जाएंगे। तो मन ठीक हो गया, मन में उदासी खत्म हो गई, चिंता खत्म हो गई, बेफिक्र बन गए, है ना, नींद आने लग गई। नींद माना चार विचार से कम, जो विचार 25-30 हो गए थे, नींद नहीं आती थी, गोली खाके भी नहीं आती थी, अब नींद भी आनी शुरू हो गई, चिंता खत्म हो गई, क्योंकि फकुर आ गया, बाबा मैं बाबा का बाबा मेरा, फकुर आ गया, चिंता खत्म हो गई, उदासी आनंद आ गया, उदासी का भाग गई, नहीं गुस्सा प्यार आ गया, अभी प्यार का सागर अंदर आ गया, गुस्सा भाग गया, नहीं भाग गया, ईगो भाग गई, है ना। और शरीर में क्या चाहिए था, शरीर को हार्ट को, हार्ट को प्रेम चाहिए था, प्रेम हार्ट को मिल गया, हार्ट ठीक हो गया, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो गए, फेफड़ों को शांति चाहिए थी, फेफड़े दमे के अटैक आने बंद हो गए, पेट में अल्सर बन गया था, पेट में खुशी नहीं थी इसलिए अल्सर बन गया था, पेट में अल्सर ठीक हो गया, लीवर खराब हो गया था, खुशी नहीं थी, लीवर ठीक हो गया, हाथों में कब्जी रहती थी, कब्जी ठीक हो गई, थायराइड की बीमारी आनंद नहीं था, थायराइड की बीमारी थी आनंद ठीक, आनंद आया तो थायराइड की बीमारी भी कम हो गई, कंट्रोल हो गई, डायबिटीज थी आनंद नहीं था, आनंद की कमी से डायबिटीज बहुत बढ़ गई थी, आनंद आ गया तो डायबिटीज भी कम हो गई, कंट्रोल हो गई, नहीं हड्डियों में दर्द होता था क्योंकि शक्तियां नहीं थी, हड्डियों में शक्तियां आ गई तो हड्डियों में दर्द कम हो गया। जो दवाई पहले काम ही नहीं करती, दवाई अभी पहले 5 गोली खाके बीपी कंट्रोल नहीं होता था, आज आधी गोली खाके बीपी कंट्रोल हो रहा है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेके जो पहले शुगर कंट्रोल नहीं होती थी, आज इंसुलिन के इंजेक्शन की आवश्यकता ही नहीं, आधी गोली खाके शुगर कंट्रोल हो जाती है ना। तो इस तरह से सारी बीमारियां, मन की और तन की बीमारियां किससे ठीक होती है, किससे ठीक होती है? दिल से कहो मेरा बाबा। किससे कहें, दिल से कहें कि दिमाग से कहें? दिल से कहो मेरा बाबा। इसके लिए चार नियम चार मर्यादाएं, है ना। कौन कह सकता है सच्चे दिल से? सच्चा ब्राह्मण, ब्राह्मण माना ब्राह्मण बड़ा, मन का मन विशाल हो। ब्राह्मण शब्द की डेफिनेशन ही कहते हैं ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा ब्राह्मण बड़ी माँ, बड़ी माँ। ऐसे ही ब्राह्मण जिसका मन विशाल हो, बड़ा हो, छोटा मन वाला नहीं, इसलिए कहते हैं हाथी का सिर, गणेश का सिर हाथी का दिखाते हैं, जिसका मन विशाल हो, बुद्धि विशाल हो, बेहद की बुद्धि हो, बेहद का मन हो, बेहद की टीम हो, बेहद की स्मृति हो, बेहद की वृत्ति हो, बेहद की भावना हो, बेहद के संकल्प चलते हो, सारा विश्व खुशी हो, सारा विश्व को, सारे विश्व की आज क्या था ना स्लोगन था ना, जिसमें परोपकार की भावना हो, जो परोपकार की भावना संपन्न है वही संपूर्ण बन सकता है ना? स्लोगन था ना, याद है सुबह का स्लोगन, मुरली का स्लोगन था ना। तो ये जो स्थिति है, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, क्योंकि अमृत वेले में ही विक्रम विनाश हो सकते हैं। दिन में विक्रम विनाश, दिन में हम बाबा की याद से विक्रम ना करें वो ठीक है, फरिश्ता स्थिति बन सकती है, तो विक्रम विनाश के लिए अशरीर स्थिति चाहिए, विदेही स्थिति चाहिए, उससे ही विक्रम विनाश होते हैं, उसी समय ज्वालामुखी योग होता है। तो अमृत वेला कभी मिस ना हो, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, मुरली क्लास में बैठ के, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुने, यदि घर में बैठ के मुरली पढ़ ली चलो होगी मुरली, ऐसे नहीं, क्लास में आके अमृत वेला 7-8 मुरली सुने। सच्चा ब्राह्मण वो जो सारा दिन खाना खाते समय, पानी पीते समय, हर समय अटेंशन रखे मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ABCD को रियलाइज करता रहे, बार बार मुरली को रिवाइज करता रहे। सच्चा ब्राह्मण वो जो सोने के पहले अपना पोता मेल बाबा को रोज देवे, हर बात बाबा को, जो भी सारा दिन में हुआ वो बाबा को दे देवे, बाबा जैसा हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ सच्चे दिल से बता देवे, चार्ट लिख के बाबा की गोद में सो जावे। ये चार नियम है ब्राह्मण जीवन के, चार मर्यादाएं हैं। पहली मर्यादा पवित्रता, तन मन की शुद्धि, अर्थात इतनी ब्रह्मचर्य तो एक स्थूल बात है, किंतु उस मन में भी मेरे किसी के प्रति गलत विचार ना है, भावना भी किसी के प्रति गलत ना हो, कभी सोपन भी गलत ना है, कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ये भी अपवित्रता है, वैसे संकल्प आना भी अपवित्रता है, तो जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी उतना हमारा वाटेज बढ़ती है। वाटेज माना मैं अगर 15 वाट का बल्ब हूं तो भले मैं कितना बाबा को याद करूं मेरी 15 वाट की करंट आएगी। जितनी जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी 15 से 20, 20 15 20 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 100, 500 उतने डिग्री का बल्ब बनता जाएगा। ज्यादा करंट है, सच लाइट बन जाएगा, उतनी करंट हम बाबा से खींच सकेंगे। तो पवित्रता के ऊपर आधार है कि कितनी पवित्रता, कितनी हमारे अंदर करंट हम बाबा से ले खींच सकते हैं। दादियां क्या करती हैं, उन्होंने अपनी वॉट पवित्रता के आधार से बहुत, उनकी वॉट पावर बहुत ज्यादा है। तो पहली है तन मन की शुद्धि अर्थात पवित्रता, दूसरी है अन्न की शुद्धि। अन्न की शुद्धि माना शुद्ध अन्न, सात्विक अन्न, जो अन्न सातों गुणों को बढ़ा दे, फल सब्जियां अंकुरित दूध रोटी सब्जी, ये ताजा बनाओ, ताजा बाबा की याद में, बाबा की याद में खाओ। ये तला हुआ पराठा पकौड़ा समोसा राजसिक फूड है, तामसिक फूड ये नॉन वेज होता है ना, जो लहसुन प्याज, ये नॉन तामसिक फूड है, कभी नहीं खाना चाहिए, उससे विकार पैदा होते हैं, काम क्रोध लोभ जागृत होते हैं। राजसिक फूड से आलस्य अलबेलापन पैदा होता है। फिर संग शुद्धि, बाबा का संग, मुरली का संग, संग हमारा सत्संग, बाबा का संग। चौथी व्यवहार शुद्धि, दैवी गुणों में व्यवहार करो, सत्यता पवित्रता निर्भयता अंतर्मुखता एकाग्रता सरलता नम्रता उदारता सहनशीलता मधुरता धैर्यता गंभीरता रमणीकता संतुष्टता हर्षित मुक्ता आज्ञाकारी वफादार ईमानदार फरमानबरदार, ये दैवी गुणों में व्यवहार करो। तो चार नियम और चार मर्यादाएं जो पूरी पूरी धारण करता है वही बच्चा, वही ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण सच्चे दिल से क्या कह सकता है, मेरा बाबा। और ऐसा बच्चा, उसका मन शरीर में हिसाब किताब आएंगे, मन में हिसाब किताब भी आएंगे, क्योंकि हमने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हुए हैं, किंतु उसके लिए सूली भी कांटा हो जाएगी, और कांटा भी क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा। ओम